नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 20 जिलों की 122 सीटों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद आज घटक दलों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किए जाने की संभावना। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन अब भी जारी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत आज आरोप तय करेगी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों को उपस्थित रहने के निर्देश। और समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को बिहार रणजी टीम का उप कप्तान बनाया गया। शकीबुल गनी होंगे टीम के कप्तान। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा के 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले में मतदान होगा। 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित है। एक रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में भारत नेपाल सीमा पर स्थित 7 जिलों के अलावा दक्षिणी बिहार के 8 जिलों में भी मतदान होगा। इस चरण में सीमांचल के जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के मतदाता वोट डाल सकेंगे। वहीं मगध क्षेत्र के जिलों गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा में भी इसी चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। इसे देखते हुए स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय के साथ फ्लैग मार्च और नक्सल विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इधर पहले चरण के चुनाव के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर नामांकन का कार्य जारी है। 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। दोनों चरण के चुनाव में कुल 7,42,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतनी ही सीटें जनता दल यूनाइटेड को भी दी गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन आज इसका औपचारिक ऐलान करेगा। इसके लिए पटना में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एनडीए के घटक दलों के आज ही अपने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करने की संभावना है। इधर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। गठबंधन के घटक दलों में सीटों को लेकर मंथन जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस समेत अन्य दलों से बातचीत चल रही है, जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार आज शाम तक सीटों के बंटवारे की सूची जारी होने की संभावना है। इस बीच राजद ने अपने हिस्से की सीटों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की चुनाव समिति की भी आज दिल्ली में बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि चुनाव समिति आज प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि बैठक में कांग्रेस 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होगी या नहीं, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पटना में पार्टी कार्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री पारस ने कहा कि अगर गठबंधन में बात नहीं बन पाई तो वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा पर कहा कि जेडीयू को एनडीए में खत्म किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब विकल्प सीमित हो गए हैं।
142 पर लड़ लिए बीजेपी, अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं। 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमान जी का ना, और उसके बाद 6-6 वो हो उधर बीजेपी।
जनसुराज आज अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बताया कि पटना में यह सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 100 से अधिक उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी।
100 से ज्यादा लोगों की सूची जारी हो जाएगी। जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो जनसुराज के अभियान के दौरान बोला गया, जो पार्टी बनाने के लिए कहा गया, जिन साथियों ने जनसुराज के लिए काम किया है, जनसुराज के विचारधारा को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है, सबसे पहले वरीयता के आधार पर उन्हीं को मौका मिलेगा।
चुनाव आयोग ने 59 लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार इन्हें जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। अयोग्य घोषित किए गए लोगों पर पिछले चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा और अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है। इस सूची में मधुबनी के दिनेश मंडल और अनीता कुमारी, अस्थावा के सुशील प्रसाद, राजगीर के पप्पू पासवान, नोखा विधानसभा क्षेत्र के शशिकांत गुप्ता सहित अन्य पूर्व प्रत्याशी शामिल हैं। चुनाव आयोग मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान प्रतिशत की रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगा। इसके लिए आयोग की ओर से एक ऑनलाइन ऐप ACI नेट का परीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा अपलोड करेंगे। इस ऐप के माध्यम से लोगों को प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत की जानकारी मिलती रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में शामिल होने और अपने सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर सीधे बातचीत करेंगे। और अब चुनाव से जुड़ी अन्य खबरें। शिवहर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने औचक निरीक्षण के दौरान चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में एक प्रधानाध्यापक और एक पंचायत सचिव सह सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं 3 स्कूलों के प्रधानाध्यापक की वेतन कटौती करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अररिया जिला समाहरणालय के NIC में आज EVM का प्रथम रैंडमाइजेशन किया जाएगा। पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्रवार मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनों का आवंटन किया जाएगा। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के फैजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में स्वीप कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो और बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं हुई। वैशाली जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी वर्षा सिंह और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में लालगंज और वैशाली प्रखंड के विभिन्न भागों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब तक राज्य के विभिन्न भागों में पुलिस ने 9,28,00,000 रूपये की शराब जब्त की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस दौरान 60,00,000 से अधिक नकद रूपये भी जब्त किए गए हैं। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत आज आरोप तय करने के संबंध में फैसला सुनाएगी। इसके लिए मामले के सभी आरोपितों, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने 29 मई को मामले पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कल से 16 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के 9 जिलों में कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा में प्रश्न पत्र माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 1 और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 2 होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। समिति की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इधर समिति की ओर से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन तिथि में विस्तार किया गया है। अब 22 अक्टूबर तक आवेदन भरे जा सकते हैं। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को बिहार रणजी टीम का उप कप्तान बनाया गया है। वैभव बिहार रणजी के इतिहास में सबसे कम उम्र के उप कप्तान होंगे। हरफन मौला खिलाड़ी शकीबुल गनी को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं 4 नए चेहरों को भी टीम में जगह दी गई है। रणजी मुकाबलों के प्लेट ग्रुप में बिहार का पहला मैच 15 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश से होगा। ये मैच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लिखा है, एनडीए में जदयू और भाजपा को एक समान सीटें मिली। दैनिक भास्कर इसी खबर पर लिखता है, अब हम तुम बराबर, मांझी और उपेंद्र को 6-6, चिराग को 29 सीटें। प्रभात खबर ने लिखा है, विरासत बचाने उतरेंगे राजनीतिक योद्धा, लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी परिवार में हो रहा है बंटवारा। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, 150 साल तक जी सकेगा इंसान, एजिंग धीमी पर शोध। आज अखबार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के हवाले से लिखा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत कदम था। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, फिल्म फेयर अवार्ड में कार्तिक और अभिषेक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 20 जिलों की 122 सीटों के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद आज घटक दलों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किए जाने की संभावना। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन अब भी जारी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत आज आरोप तय करेगी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों को उपस्थित रहने के निर्देश। और समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को बिहार रणजी टीम का उप कप्तान बनाया गया। शकीबुल गनी होंगे टीम के कप्तान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।